समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश दम निकली, बहुत निकली मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकली।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। Yes, December 27th has already arrived, dear listeners. मतलब सिर्फ चार दिन का मेहमान है साल 2025 and 2026 is already knocking at the door. तो अगर आपकी कुछ ख्वाहिशात अधूरी रह गई हैं, तो दिल मायूस मत कीजिए। इस साल के चार दिन और बचे हैं और भाई 2026 तो मुस्कुरा ही रहा है और हम भी मुस्कुरा रहे हैं। Like every day, we bring you आज सवेरे। नमस्कार, आदाब and a very warm welcome to this very very fresh episode of आज सवेरे। Here is Saira Mujtaba और मेरे साथ है देवेंद्र।
जी सायरा, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपने श्रोताओं को हम बताएं कि इस न्यूज मैगजीन का आगाज हमने इस गजल के साथ क्यों किया।
Because today is 27th December and those who are fond of Urdu poetry would know that today was born that great, great, great poet, the Ghalib. Yes, it's Ghalib's birth anniversary. तो उनको खिराज अकीदत तो हम लोग देंगे. We'll pay a tribute to him विस्तार से in our personality section when we remember some more personalities who either have their birth or death anniversaries. उसके अलावा जो कुछ हम आज सवेरे में आपके लिए लाते हैं वो तो है ही, but क्यों ना शुरुआत की जाए ताजा तरीन खबरों से. So let's start with the headlines. देव
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कल से शुरू हुए तीन दिन के सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर सतत बातचीत के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है। ये सम्मेलन केंद्र और राज्य को एक मंच पर लाकर देश की मानव पूंजी क्षमता और समावेशिता को बढ़ाने तथा भविष्य में विकास की गति तेज करने के लिए एकीकृत रोडमैप तैयार करेगा। इस सम्मेलन में विकसित भारत के लिए मानव पूंजी विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतियों को शामिल किया जाएगा। इस दौरान पांच प्रमुख क्षेत्रों प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्कूली और उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास, खेल और पाठ्येतर गतिविधियां पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में छह विषय सत्र आयोजित किए जाएंगे, जो राज्यों में विनियमन में ढील, शासन में प्रौद्योगिकी अवसर, जोखिम और समाधान, स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखलाओं और बाजार संबंधों के लिए एग्री स्टैक, एक राज्य एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी तथा वामपंथी उग्रवाद के बाद के भविष्य के लिए रणनीतियों पर केंद्रित होंगे।
The Central Bureau of Investigation or CBI has approached the Supreme Court challenging the order of the Delhi High Court suspending the life sentence and granting bail to former Uttar Pradesh MLA Kuldeep Singh Sengar in the Unnao rape case. The CBI yesterday filed a special leave petition or SLP before the Apex Court against the High Court's decision. Earlier this week, the High Court ordered the suspension of former legislator's sentence during the pendency of his appeal against conviction and life imprisonment and also granted him conditional bail.
गृहमंत्री अमित शाह ने देश भर में आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS का एक साझा ढांचा बनाने का आह्वान किया है। गृहमंत्री ने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को इसे जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पुलिस के लिए साझा ATS ढांचा प्रत्येक स्तर पर आतंकी हमलों को रोकने में सहायक होगा। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के दो दिवसीय आतंकरोधी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने भविष्य की चुनौतियों का मजबूती से सामना करने के लिए देश में एक अभेद्य और मजबूत आतंकवादी रोधी ग्रिड बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए सभी एजेंसियों को देश और दुनिया की प्रत्येक आतंकवादी घटना का विश्लेषण करना चाहिए। गृहमंत्री ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में आतंकवाद को प्रमुखता से खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि ये वार्षिक सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के विजन के तहत उभरते खतरों से निपटने के लिए एक मंच बन गया है।
केरला मंडला पूजा द मोस्ट ऑस्पिशियस रिचुअल ड्यूरिंग द 41 डे मंडला व्रतम विल बी कंडक्टेड एट द सबरीमला श्रीधर्मा सास्ता टेम्पल टुडे। As part of the ceremony, the deity will be adorned with the Thangayanki, the golden attire, followed by special prayers. The Travancore Devaswam Board has made elaborate arrangements for crowd management, security, medical services and pilgrim amenities. Darshan during the Mandala Puja period is being regulated through the virtual queue system along with limited spot bookings as per official guidelines. The temple will close after the Mandala Puja and reopen on 30th of December for the Makaravirakku pilgrimage season.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गोवा, कर्नाटक और झारखंड के 4 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज शाम गोवा के लिए रवाना होंगी और कल कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से पनडुब्बी में समुद्री यात्रा करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू सोमवार को जमशेदपुर में ओल चिक्की लिपि के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। इस लिपि का सृजन 1925 में रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा के लिए किया था। ये लिपि संथाल आदिवासी समुदाय के लिए सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनकी पहचान, साहित्य और विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रपति उसी दिन एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मंगलवार को झारखंड के गुमला में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक यात्रा को संबोधित करेंगी। और खेलों में भारत ने तीसरे महिला क्रिकेट T20 मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की बढ़त बना ली है। कल रात तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 112 रन बनाए। भारत ने सिर्फ 13 ओवर और 2 गेंद में 115 रन बनाकर मैच जीत लिया। रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।
The year 2025 stands as a defining chapter in India's development journey. It saw policies translate into progress and intent into impact. In the special series, Year of Reforms, today our correspondent brings a report on India's progress in the taxation sector in 2025.
India's tax history reflects the revolving relationship between the state and its citizens, from the oppressive salt tax challenged by Mahatma Gandhi in 1930 to income tax rates touching an extreme 97.5% during the 1970s. Excessive taxation fostered distrust, fear-driven compliance, and widespread evasion. The tax reforms initiated by the Narendra Modi government over the past 8 years and decisively carried forward in 2025 mark a clear departure from that legacy. The key pillar of this transition is the next generation GST reforms. While GST's introduction in 2017 unified India into a single market, multiple slabs, classification disputes, and compliance complexities persisted. This year, the system was rationalized into 2 main slabs from 5% and 18% with clear from 5% and 18% with clearer classifications, easier registration and simplified compliance.
2014 से पहले इतने सारे टैक्स थे और उसके कारण बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट दोनों ही कभी भी संतुलित नहीं हो पाते थे। उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। 1,000 रुपये की शर्ट पर 170 रुपये टैक्स लगता था। साल 2017 में जब हम जीएसटी लाए तो आने के बाद पहले जीएसटी में 117 से कम होकर के 50 हो गया और अब 22 सितंबर को लागू हुए रेट्स के बाद 1,000 रुपये के उसी शर्ट पर सिर्फ 35 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे।
The impact has been visible in consumption and revenue trends. India recorded its highest ever sales at over 6 trillion rupees and record automobile sales in October. Households are expected to save about 2.5 lakh crore rupees annually due to GST cuts and income tax relief. Insurance premiums now attract zero GST, while daily essentials and consumer goods have become more affordable. Income tax reforms have delivered major middle class relief, with the exemption limit rising from 2 lakh rupees in 2014 to 12 lakh rupees this year. This year, tax reforms represent not just fiscal restructuring, but a philosophical shift where trust, simplicity, transparency are driving growth and compliance. With Ishani Yadav, Pallavi Parmar, Akashwani News, Delhi.
आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप सुन रहे हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे, और कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को मेट्रो न्यूज।
Yes, we'll be here with a buzz from your own metro city. So let's start with Shehre Chennai. Well, Pongal is round the corner, Dev. And come Pongal and people of Chennai will have one more recreational spot.
Ji.
This Pongal, people of North Chennai will have a unique recreation at their own locality. The jet ski facility, the first of its kind to be introduced in a renovated water body in the city. The Madhavaram Lake is all set to become the first renovated water body in the city, offering jet ski facilities for water sports enthusiasts. It will also become the second lake in Chennai to offer boating. Rejuvenated and developed as a recreational hub by Greater Chennai Corporation, Madhavaram Lake is a very much sought after spot now. Dewatering, desilting and installation of handrails, electrical works are underway. Moving on to Bengaluru. The Bengaluru City Police Commissioner Seemant Kumar Singh held a meeting on security drill for the forthcoming New Year celebrations in the city. The meeting discussed the preparations for the night of December 31, when revelers gather in thousands on Bengaluru streets and joints to usher in the New Year. The Police Commissioner issued guidelines yesterday to maintain law and order and to ensure the safety of women, children and senior citizens. So Dev, of course, we all know that, you know, we all like to welcome the New Year with a lot of fun and frolic, but we should be responsible at the same time.
Ji,
so even though the police everywhere in all the cities is doing its bit in ensuring law and order, it's also our responsibility to behave in a more responsible manner. Aapko jo hai kehte nahi hai ki enjoy karne se koi nahi rok raha hai, lekin aapko enjoyment dusre ke liye zehmat na bane.
Aur koi bhi tyohar manate samay jo aapka ullas hai, aapka umang hai,
yes,
aur aapka jo anand hai, wo bilkul aapne theek kaha, किसी और के लिए मुश्किल ना बने।
Absolutely. And now moving on to Hyderabad. Hyderabad Police Commissioner V.C. Sajanar has announced a strict zero drugs policy to ensure a drug-free environment for citizens and unveiled a multi-layered enforcement plan. He informed the media that the plan involves the deployment of Hyderabad Narcotics Enforcement Wing, the Task Force, Special Branch and local police to ensure that there is no movement of narcotics ahead of New Year. So, well, Dev, this was the buzz that I had from these three metro cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the buzz that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी, सारा कल वीर बाल दिवस मनाया गया और इस अवसर पर राजधानी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में कल कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली स्थित त्यागराज स्टेडियम में कहा कि वीर बाल दिवस आने वाली पीढ़ियों में साहस, स्वाभिमान, राष्ट्रप्रेम और नैतिक दृढ़ता के संस्कार रोपित करने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने अत्यंत छोटी उम्र में जिस अदम्य साहस, दृढ़ आस्था और धर्मनिष्ठा का परिचय दिया, उसकी मिसाल विश्व इतिहास में कायम है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज द्वारा वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान, उनके नैतिक पराक्रम और अद्वितीय वीरता पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के जनपद स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 29 दिसंबर को डॉ कपिला वात्स्यायन स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। आत्मबोध से विश्वबोध शीर्षक का व्याख्यान गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉ भाग्येश झा देंगे। इस दौरान अभिव्यक्ति एक दूरदर्शी के संग्रह से करघे की अभिव्यक्तियां शीर्षक की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी होगा। ये प्रदर्शनी 7 जनवरी 2026 तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जनता के लिए खुली रहेगी। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यातायात को सुगम बनाने के लिए पार्किंग शुल्कों में बदलाव किए गए हैं। रेलवे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि निजी वाहनों के लिए पहले 8 मिनट निःशुल्क रहेंगे और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 30 रूपये का शुल्क लगेगा। श्री उपाध्याय ने बताया कि 15 मिनट से अधिक समय तक रुकने पर निजी और वाणिज्यिक वाहनों को 200 रूपये की जगह पर 150 रूपये शुल्क देने होंगे। आधा से एक घंटा तक रुकने पर 500 रूपये शुल्क को घटाकर 200 रूपये किया गया है। चलते हैं मुंबई, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल वीर बाल दिवस के अवसर पर सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादे बाबा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहिबजादों के शौर्य और बलिदान ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मिशन लक्ष्य वेद पहल के अंतर्गत मुंबई के उपनगरीय जिले में टेबल टेनिस, कुश्ती, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और शूटिंग के लिए एक खेल प्रतिभा विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुंबई उपनगरीय जिला खेल अधिकारी कार्यालय ने इन खेलों के लिए एनआईएस लेवल कोर्स प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक योग्यता रखने वाले योग्य प्रशिक्षकों से 31 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये पहल राज्य सरकार की त्रिस्तरीय खेल प्रशिक्षण प्रणाली स्थापित करने की योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र के एथलीटों को ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करने में मदद करना है। और आईआईटी बॉम्बे तथा तोहोकू विश्वविद्यालय ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम 2025 एक साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय अल्पकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम है, जो 14 से 19 दिसंबर 2025 तक जापान के तोहोकू विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। चयनित छात्रों ने एआई और मशीन लर्निंग से लेकर आपदा विज्ञान और शमन, डिजिटल स्वास्थ्य, परिवहन प्रणाली, रोबोटिक्स, क्वांटम विज्ञान, सेमीकंडक्टर, सामग्री विज्ञान, ऊर्जा प्रणाली, एयरोस्पेस और थर्मल फ्लूइड विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में शिक्षण प्राप्त किया। और चलते हैं मुंबई से कोलकाता, जहां पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सेफ ड्राइव सेव लाइफ अभियान की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक अनूठी पहल शुरू कर रहा है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। विभाग कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित वैशाखी आबासन मैदान में 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। परिवहन विभाग प्रीमियर क्रिकेट लीग के नाम से आयोजित इस टूर्नामेंट में पश्चिम बंगाल परिवहन निगम, परिवहन निदेशालय और सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की 8 टीमें भाग लेंगी। परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि विभाग ने पहले भी क्रिकेट मैचों का आयोजन किया है, लेकिन इस वर्ष का आयोजन विशेष रूप से सड़क सुरक्षा के संदेश को व्यापक रूप से फैलाने के लिए किया गया है। सारा महानगरों की खबरें हमने अपने श्रोताओं को बताई और अब हम बात करते हैं महानगरों के मौसम की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी सुबह के समय कोहरा कई जगहों पर मध्यम से घना रहा। न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम 27 डिग्री रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहने के आसार हैं, तापमान 18 और 33 के बीच रह सकता है। और कोलकाता में भी सुबह के समय हल्का और कहीं पर मध्यम कोहरा रहा, आसमान साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है और तापमान 24 तथा 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है।
वेल देव, अगर बात की जाए चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड मोस्ट ऑफ द सदर्न सिटीज आर हैविंग अ वेरी वेरी प्लेजेंट वेदर दीज डेज एंड यू नो हमारे दिल्ली वालों की तरह ठिठुर नहीं रहे, वो लोग लुत्फ उठा रहे हैं इन सर्दियों का, जिसे कहते हैं ना द रोजी विंटर्स आर बीइंग एक्सपीरियंस डाउन साउथ। चेन्नई विल हैव सम मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर, टेम्परेचर विल हॉवर बिटवीन 21 एंड 29 डिग्री सेल्सियस। इन बेंगलुरु अगेन दे वुड बी मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड टेम्परेचर विल हॉवर बिटवीन 15 एंड 28 डिग्री सेल्सियस। While Hyderabad will have again a little bit of fog in the morning, but mainly clear sky later. In Hyderabad, the minimum temperature was 14, while maximum will be around 28 degrees Celsius.
और अब आगे बढ़ते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, जानते हैं क्या है आज के दिन कुछ खास।
Yes, and before we turn the pages of history, Dev, let's tell our listeners that every year on December 27, the International Day of Epidemic Preparedness is observed. This day raises awareness about the need to be ready for future epidemics. और हम लोग की जनरेशन ने तो भाई कोविड का पैंडेमिक भी देख लिया, you know, और
उसके बड़ा दौर देखा है।
बहुत मतलब इट वाज अ लाइफ चेंजिंग और आई थिंक लाइफ चेंजिंग पर्सनालिटी चेंजिंग दौर था। एंड ऑल्दो दैट वाज अ पैंडेमिक, वी आर ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट एपिडेमिक, नन द लेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट एपिडेमिक्स। एंड इन अ मैसेज ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस, UN Secretary General Antonio Guterres said that on this important day, we remind ourselves that resilient communities are fundamental to preventing and responding to epidemics and pandemics. एंड नाउ व्हेन वी टर्न द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, तो सबसे पहले कौन सी तारीख उभर के आ रही है?
जी, 1861, जब कलकत्ता में चाय की पहली सार्वजनिक बोली संपन्न हुई थी, जिसने व्यापारिक इतिहास में चाय की महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित किया। और आज सुबह जब आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर चाय पी रहे होंगे।
That's right. So, आजकल वो हर्बल टीज का बड़ा चलन चला है ना, उसको भी लोग टी कह देते हैं।
बिल्कुल,
तो ये खबर बहुत अच्छी थी कि यू नो यू शुड यू नो यूज द वर्ड टी वेरी केयरफुली। इफ देयर इज नो टी प्लांट, जो एक कैमेलिया सिनेंसिस जो उसका बॉटनिकल नेम है,
जी,
अगर
जी.
वो आपकी चाय में नहीं है तो वो चाय नहीं है।
उसको इसलिए बोला गया होगा yeah. क्योंकि लोग चाय की जगह पर उसको ले रहे हैं।
एग्जैक्टली, मतलब दे आर कॉलिंग इट टी एंड ऑल द फ्लावर टीज एंड ऑल दीज टीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, बट नॉनदलेस चाय का चाय ही रहने दे है ना।
जी.
और नाउ आई टेक आवर लिसनर्स टू द ईयर 1911. आवर नेशनल एंथम वाज फर्स्ट सांग एट द इंटरनेशनल कांग्रेस सेशन दैट वाज हेल्ड एट कलकत्ता. तो जनगण मन पहली बार आज ही के दिन गाया गया था सन 1911 में.
जी, और 1927 में ब्रॉडवे पर पहला अमेरिकी म्यूजिकल शो बोट शुरू हुआ था. 1931 में चार्ल्स डार्विन ने HMS बीगल पर अपनी ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की थी.
एंड ऑन दिस डे 1926 द इंपीरियल एयरवेज अनाउंस्ड द फर्स्ट शेड्यूल्ड एयर सर्विस टू इंडिया फ्रॉम द कमिंग न्यू ईयर इन यूनाइटेड किंगडम. ऑल्सो ऑन दिस डे 1932 द रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल ओपन्ड इन न्यूयॉर्क सिटी.
जी, और 1945 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना हुई थी.
On this day, 1968, Apollo 8 was the first crewed mission to orbit the moon. It safely splashed down in the Pacific.
जी, और इतिहास के बाद हम चलते हैं आगे और याद करते हैं उन महान नायकों, महान लोगों को जिनके विचार, जिनके कार्य हमें आज भी प्रेरित करते हैं. स्मरण कर रहे हैं परमवीर चक्र से सम्मानित अद्वितीय वीर सैनिक लांस नायक अल्बर्ट एक्का को. झारखंड की राजधानी रांची तत्कालीन बिहार में 27 दिसंबर 1942 को जन्मे लांस नायक अल्बर्ट एक्का 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की 14 गार्ड्स बटालियन में तैनात थे. पूर्वी मोर्चे पर गंगा सागर क्षेत्र में दुश्मन की चौकियों पर हमले के दौरान उन्होंने अदम्य साहस और असाधारण वीरता का परिचय दिया. भीषण गोलाबारी के बीच उन्होंने एक के बाद एक दुश्मन की कई चौकियों को नष्ट किया और अंततः देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए. उनकी अनुपम वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया. नमन ऐसे वीरों को.
तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू. तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. केसरी
श्रोताओं, आज भारतीय कला जगत की कैसे मनीषी को भी स्मरण करने का दिन है जिन्होंने नृत्य को केवल मंच तक सीमित नहीं रखा बल्कि इतिहास, आलोचना और विचार के स्तर पर नई ऊंचाइयां दी. हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार, आलोचक और लेखक पद्मश्री सुनील कोठारी की. 27 दिसंबर 2020 को सुनील कोठारी इस संसार से विदा हुए, लेकिन शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य पर उनका योगदान आज भी जीवंत है.
और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां. और यस, टुडे इज 27th December एंड वी आर पेइंग ट्रिब्यूट टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन द हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर, मिर्जा असदुल्ला बे खान, जिनको दुनिया जानती है गालिब के नाम से. हिज पोएट्री ऑफन एड्रेस थीम्स ऑफ लव, लॉस, फिलोसफी, ह्यूमन कंडीशंस एंड सोशियो पोलिटिकल डिस्टर्बेंसेज विद अ डेप्थ एंड कम्प्लेक्सिटी दैट इन्फ्लुएंस लिटरेरी ट्रेडिशंस ऑफ हिज टाइम. हिज गजल्स नोटेड फॉर द इंट्रिकेट इमेजरी एंड लेड मीनिंग्स फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ उर्दू लिटरेचर.
गालिब ने शायरी को परंपरागत प्रेम भावनाओं से आगे बढ़ाकर जीवन, अस्तित्व, ईश्वर और मानवीय संघर्षों से जोड़ा. उनकी उर्दू गजलों का संग्रह दीवाने गालिब को आज भी साहित्य जगत की अनमोल धरोहर माना जाता है.
That's right. And देव, अगर गालिब के कुछ अशार की बात की जाए तो मतलब what a marvelous artist he was a craftsman with words. मतलब पर्शियन हो चाहे बाद में उन्होंने उर्दू में थोड़ा सा सखील उर्दू थी, फिर उसके बाद बहुत ही आसान उर्दू में लिखना शुरू किया. एंड ये गालिब का ही इंटेलेक्ट था जो कहता था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. एंड मेनी ऑफ हिज गजल्स हैव बीन इमॉर्टलाइज्ड इन द मेलिफ्लुअस वॉइस ऑफ जगजीत सिंह, सो व्हाई नॉट लिसन टू वन सच गजल.
सरों में तक
श्रोताओं, गालिब के पत्रों ने उर्दू गद्य को सरल, आत्मीय और आधुनिक रूप प्रदान किया। उनकी लेखनी में विचार की गहराई और मानवीय संवेदना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। गालिब का साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि वो मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष और प्रश्नों से सीधा संवाद करता है।
And though difficult in their structure initially, but his couplets are often quoted by masses in their day-to-day life. कई बार होता नहीं है कि हम लोग कुछ भी देखते हैं जो समाज में कुछ सही नहीं लग रहा, तो मेरे तो मुंह पे सबसे पहले आता है कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबर रोज तमाशा मेरे आगे। और अगर कुछ कहते नहीं है कि इंसान नेगेटिव होने लगता है जिंदगी में, हर के उतार चढ़ाव आते हैं, बट गालिब कपलेट्स, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। सो वी शुड रिमाइंड अवरसेल्व्स दैट इट्स नॉट यू नो योर फाइनल डे ऑन अर्थ। तो एक सुबह के साथ, एक नए सवेरे के साथ नई उम्मीदें भी आती हैं। इंटरेस्टिंगली, मोस्ट ऑफ गालिब्स लेटर्स हैव सर्वाइव्ड देव, एंड आई थिंक दे आर मार्वलस लेटर्स। उनके जो खतूत हैं जो बचे रह गए हम लोग के पास, फॉर्चुनेटली आई थिंक दे देमसेल्व्स आर यू नो अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ लिटरेचर। हिज डिस्टिंक्ट राइटिंग स्टाइल एंड लैंग्वेज लेंड्स क्रेडेंस टू द लेटर्स एंड प्राइमरली एड्रेस टू हिज फ्रेंड्स। द लेटर्स एनकैप्सुलेट द इंट्रिकेसीज ऑफ गालिब्स लाइफ एंड टाइम्स। ही हैड अ वेरी सैड लाइफ बिकॉज उनके इतनी सारी औलादें थी, आई थिंक 7 or 8, एंड ऑल ऑफ देम डाइड इन देयर इन्फेंसी। तो कहते नहीं है जिसने दुश्मन को भी खुदा जो है औलाद का गम ना दे, बट जिसने इतनी सारी औलादें खोई, सो वी कैन ओनली इमेजिन द लॉस। बट नॉनदलेस ही वाज नेवर अ डिजेक्टेड पर्सन। उनकी पोएट्री हमेशा एक, कहते नहीं, एक उम्मीद ही जगाती है।
बिल्कुल,
इवन दो स्पीकिंग ऑफ ग्रीफ, ही रिमाइंड्स अस ऑफ होप।
इतने आंतरिक संघर्षों के बावजूद एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को उम्मीद की लौ दिखाता है, उम्मीद की रोशनी दिखाता है।
एब्सोल्युटली। और आजकल के दौर में खासतौर से हमें गालिब क्यों याद आता है, बिकॉज इन दीज डेज एवरीबडी इज हैविंग मच ऑफ गुस्सा और रेज कितनी बढ़ गई है। आपने मेरी घर के आगे पार्किंग की तो हम आपको गोली मार देंगे, आपने ये किया तो ये। बट फिर गालिब का वो जो गजल है ना, वो बट एक गालिब की गजल अक्सर याद आती है जब लोग कहते नहीं आजकल ऐसे शब्द यूज करते हैं कि हर एक बात पे कहते हो कि ये तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है।
हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो के ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो के ये अंदाज़े गुफ्तगू।
And Ghalib was a mentor to countless poets, Dev, Shefta, Hali and Mir Mehndi Majrooh being one of the few among the long list of his distinguished disciples. In fact, he also mentored Daag Dehlvi after the death of Sheikh Ibrahim Zogh.
जी, शब्दों के माध्यम से जीवन को समझने और जीवन को अभिव्यक्ति देने वाले महान रचनाकार को नमन। और आज 27 दिसंबर को भारतीय सिनेमा के स्टार कलाकार सलमान खान भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सलमान खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म मैंने प्यार किया से की और पहली फिल्म देश भर के दर्शकों को पसंद आई और देश भर के दर्शकों का दिल जीता। इसके बाद हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन, जुड़वा और बीवी नंबर वन जैसी फिल्मों ने उन्हें लोकप्रियता के नए शिखर पर पहुंचाया।
And we have prepared a very nice medley of Salman Khan songs. जो वो वाला दौर था ना सुब्रमण्यम, जब उनकी आवाज बनते थे,
SP Bala Subramanian,
तो why not listen to that medley?
जी।
पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना, कैसा मेरा यार है। ओ, ओ, जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। ओ, ओ, जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। सनम
तेरे मस्त मस्त दो नैन,
मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन
मेरे रंग में।
और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां हमें कह रही हैं कि हम आप सभी से ले लें विदा, लेकिन आप लगातार बने रहिए आकाशवाणी के साथ।
इसी के साथ दीजिए इजाजत सायरा और देव को
नमस्कार।
जवाब दो।